अभी हमने जो गीत सुना वही टॉपिक है, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो ये जो गीत है एक विरह गीत है और ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ये एक मुहावरा है। तो मुहावरे तो कई होते हैं जो वार्तालाप में यूज किए जाते हैं, तो इस मुहावरे का हम अर्थ देखेंगे कि चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरा, मतलब कि कुछ दिन कुछ घड़ियां खुशियों की मौजों की और उसके बाद तुरंत मायूसी उदासी। तो ऐसा जीवन में क्यों होता है? बोलते हैं कि हर दिन दिवाली नहीं होता, लेकिन बाबा ने तो हमें कहा है ब्राह्मणों का हर घड़ी मौजों का, हर श्वास हर संकल्प मौजों का युग है, संगम युग है। कभी कहा है कि हर घड़ी आपकी अमृत वेला है, कभी कहा है कि आपकी हर घड़ी न्यू ईयर है, न्यू ईयर की मुरली के समय। तो दुनिया में तो ये कहावत है और अभी हमने ये गीत सुना, तो ये गीत उन लोगों के लिए समर्पित है कि जो बाप के बने और बाप का हाथ छोड़ के फिर उस दुनिया में चले गए। या तो फिर दूसरा कि अभी इस लॉकडाउन में जो बाबा के लाडले अपने अपने घरों में बंद है और वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और उनको मधुबन याद आ रहा है। चार दिन की चांदनी फिर है अंधेरी रात, हम इधर है वो उधर है बेकसी का साथ। तो ये साथ तो बाबा देने के लिए हजार बुझाओं वाला बाबा हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हमें क्या करना होगा? हिम्मत का कदम बढ़ाना होगा। भले हम शरीर से हजारों किलोमीटर दूर है मधुबन से, तो भी मन हमारा मधुबन में है, तो आप है ही मधुबन में। फिर अगला जो है, क्या खबर थी उनका दामन हाथ से छूट जाएगा। क्या पता था ये अचानक लॉकडाउन हो गया। मधुबन की टिकट भी निकाली हुई थी लेकिन पहुंच नहीं पाए, सारे प्रोग्राम क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फिर हाँ, गम के हाथों जिंदगी का कारवा लुट जाएगा, दिल लगाकर गम उठाए क्या अनोखी बात है। तो इसका उत्तर भी वो प्रेयसी दे रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है कि हम क्या करेंगे, दिल लगाकर इस गम को उठा देंगे। चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मिट रही है मेरी दुनिया और मैं देखा करूं, हाय ये मुश्किल के दिन कैसे बिताऊं क्या करूं। तो ये भले दुनिया वालों के लिए मुश्किल की घड़ियां हो सकती है, लेकिन हम बच्चों के तो बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बहुत सुंदर एक टाइम दिया है। हाय ये मुश्किल के दिन में कैसे बिताऊं क्या करूं, हे दिल के मालिक लाज मेरी अब तुम्हारे हाथ है, चार दिन की चांदनी है फिर घनेरी रात है। तो हम मन से तो मधुबन में हैं, बाप के साथ हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते भी कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई कह देता है कि ये तो क्या है, चार दिन की चांदनी है, देखेंगे क्या होता है। तो इस मुहावरे का दूसरा भी एक अर्थ है कि कटाक्ष के रूप में, कोई व्यक्ति है कोई नई चीज खरीदता है या कोई उमंग उत्साह से कोई नई बात करने लगता है तो उसको कटाक्ष का सामना करना पड़ता है, तभी इस शब्द का यूज किया जाता है। हाँ, मराठी में भी वो कहावत है कि नव्याचे नौ दिवस, मतलब नया जो है उसके नौ दिन होते बाद में वो पुराना हो जाता है। तो हमें हर दिन नया और मौजों की घड़ियां कैसे मनानी है वो बाबा ने, हाँ कि अभी तो हम मौज कर रहे हैं लेकिन इस समय जो घड़ियां है पुरुषार्थ की, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। तो वो भी उदाहरण आगे है। तो हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे। जैसे पिछले बार हमने वो अपडेटेड कौवे की कहानी सुनी थी, तो उसी तरह हम सभी ने एक कहानी सुनी हुई है राजा भर्तृहरि के। तो उनको उनकी जो प्रिय रानी होती है वो क्या करती है, धोखा देती है और उसके बाद उनको वैराग्य आता है। तो उसके पहले वो क्या करते हैं, जो उनकी दूसरी रानी होती है तो उसकी वो परीक्षा लेना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, शिकार से जब लौटते हैं तो अपने सिपाही के पास कुछ वस्त्र देते हैं और उनको खून लगाया हुआ होता है और बोलते हैं कि वो अपने रानी को दिखा के आए कि देखो राजा को तो शेर ने खा लिया। तो वो तो सेवक होता है, वो राजाज्ञा का पालन करते हुए महारानी के पास जाता है और उनको वस्त्र दिखाता है कि देखो राजा को तो शेर ने खा लिया। तो वो तुरंत अपने पति के शोक में अपने प्राण त्याग देती है, त्याग प्राण त्याग दे जाती। तो ये देखकर राजा को बड़ा दुख होता है कि पहली पत्नी ने तो उनको धोखा दे ही दिया था लेकिन दूसरी रानी का तो उनके ऊपर बहुत प्रेम था। तो वो क्या करते हैं, गेरुए वस्त्र पहन के बाहर निकलते हैं और पूरा राजपाट का त्याग कर देते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हुए, ऐसे ही घनेरी रात होती है, चांदनी रात होती है। तो उस चांदनी रात में उनको रास्ते चलते कुछ चमकता हुआ रास्ते पर नजर आता है और वो उसकी ओर बढ़ते हैं और हाथ में उठाते हैं तो वो किसी ने पान खा के थूका हुआ होता है जो उस चांदनी रात में चमक रहा था। फिर उस राजा को, भर्तृहरि राजा को तुरंत स्मृति आती है कि मैं तो पूरा राजपाट त्याग कर, इतने सोने का महल त्याग कर मैं इस मार्ग पे चला हूं, फिर भी मुझे क्यों आकर्षण हुआ सोने का। तो सोना ऐसी चीज है कि जो आकर्षित करता है। भले शरीर से उन्होंने क्या किया था, महल का त्याग किया था, कपड़ों का, वस्त्रों का त्याग किया था, लेकिन मन अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ था। हाँ, तो उसी तरह हम इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई बातें स्थूल रूप से तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन के अंदर कई सूक्ष्म इच्छाएं हैं जिनके ऊपर हमने अभी तक विजय प्राप्त नहीं किया हो। जैसे कि सीता का भी उदाहरण है कि उस सुवर्ण मृग के पीछे उसने अपने आप को शोक वाटिका में, उस घनेरे अंधेरे में धकेल दिया। तो ये आकर्षण, कौन सा आकर्षण? सुवर्ण के प्रति आकर्षण। क्यों उसके प्रति आकर्षण है? क्योंकि वो चमकीली चीज है। हाँ, तो ये जो चमकीली चीज है क्यों आकर्षित करती है? क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि मुझ आत्मा का निज स्वरूप भी क्या है? चमकीला है। और हमारे प्यारे शिव बाबा भी कैसे हैं? चमकीले। और उन्होंने हमें उस चमक की स्मृति इस संगम युग पर दी है। तो इसी कारण से हमें चमकीली चीजें क्या करती है? आकर्षित करती है। लेकिन वास्तव में जो चमक है वो कौन सी है? पवित्रता की है, प्यूरिटी की है। जो हम बाहर ढूंढते हैं वो तो अंदर ही है। हाँ, वो दिव्य चमक है जो इन स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देती। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा समझो, वो किसी और का बच्चा है और वो उसकी माँ की गोद में है। हम रास्ते से चल रहे हैं, हम उस बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा हमें आकर्षित करता है। हम उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं, उसकी तरफ देख के हंसते हैं, उसके रिप्लाई का इंतजार करते हैं। है वो दूसरे का बच्चा, लेकिन बच्चा किसको आकर्षित नहीं करता? क्यों? क्योंकि भले उस आत्मा में पुराने संस्कार है, लेकिन वो अभी सुप्त अवस्था में। अभी वो उस बच्चे की क्या विशेषता है, क्यों आकर्षित करता है? निश्चल है, निष्कपट है, इनोसेंट है, भोला है। उसकी आंख किसी को पहचानती नहीं है, किसी में डूबती नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने आंख के बारे में कहा कि आंख कहीं जाती है तो दिल बित बित करती है, ये खाऊं ये पहनूं। हाँ, वो बालक निर्दोष होता है। वही बच्चा जब 3 साल का होता है, वही बच्चा जब 6 साल का होता है, वही बच्चा जब 17-18 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो वो आकर्षण रहता है। हाँ, जैसे ही उसके ऊपर संग का है ना प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, विकारों की स्मृति उसमें आ जाती है, तो आपे ही वो आकर्षण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे कि वो वो अनेक लोगों को पहचानने लगता है, उनके भाव स्वभाव को पहचानने लगता है, तो उसके प्रति जो आकर्षण था दुनिया को, वो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल इसी को कहेंगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। तो उस इनोसेंट बच्चे के जीवन में जो चांदनी थी, सब उसको मिचनू कहते थे, राजकुमार कहते थे, हर कोई आते जाते उसको प्यार करता था, कोई गुस्से वाले स्वभाव वाला व्यक्ति भी उसको देख के हंस पड़ता था। तो क्या हो गया, कौन से चेंजेस उसमें हो गए, कौन सा संग दोष, कौन सा स्वार्थ उसमें आ गया कि उसके कारण उसका आकर्षण ही खत्म हो गया। तो ये जो चार दिन की चांदनी खत्म हो गई। जैसे कोई ड्रामा होता था या कोई झांकी होती थी तो उसको श्री कृष्ण के रूप में सजाया जाता था, लेकिन आज उसी बालक को एक विलन के रूप में पार्ट मिल रहा है। क्यों, क्या उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही नहीं आए, लेकिन जरूर ऐसे सूक्ष्म में भी कुछ चेंजेस आ गए जो चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरा हो गया। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। अगली पॉइंट हम देखेंगे कि ये क्यों होता है जीवन में, क्योंकि क्या कमी है, दृढ़ता की कमी है। कि कोई संकल्प हम कर लेते हैं, जैसे कि न्यू ईयर है, न्यू ईयर के कुछ रिजोल्यूशन होते हैं, उसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, कल से हम जल्दी उठेंगे। लोग लिखते हैं न्यू ईयर के नए संकल्प करते हैं, लेकिन क्या होता है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा। हाँ, फिर इसमें दूसरी बात होती है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, लोग उनको सुनते हैं। आज तो बाढ़ आ गई है, यूट्यूब में खोलो, किताबें पड़ी है संसार में बहुत सारी कि हमें कैसे नकारात्मकता को छोड़ना है, कैसे फेल्यूर को छोड़ना है और कैसे सक्सेस की ओर बढ़ना है। और वो मोटिवेशनल स्पीकर बड़े उमंग उत्साह में चिल्ला चिल्ला कर सामने वाले में उमंग उत्साह भरना चाहते। तो ये मत तो क्या है, पर मत है। हम तो ईश्वरीय आज्ञा पर, श्रीमत पर, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो भी ये चार दिन की चांदनी क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि दृढ़ता की कमी है। हमें इन राहों पर चलने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है, स्वयं शिव बाबा कर रहा है, यही भूल जाते हैं। एक तो विस्मृति है और दूसरा क्या है, दृढ़ता की कमी है। फिर अगला हम पॉइंट देखेंगे कि जैसे कि पढ़ाई, लौकिक में भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर वो समय पर जो पढ़ाई का समय है पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाद में उनको पछताना पड़ेगा, हाँ चपरासी बनना पड़ेगा, अच्छा पद नहीं पाएंगे। उसी तरह इस अलौकिक जीवन में भी, जैसे हम दीदी की विशेषताएं सुनते आ रहे, दीदी का मास चल रहा है, तो कल भी संतोष दीदी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि उम्र में देखा जाए तो बड़ी दादी जो थी प्रकाशमणि दादी वो कम थी दीदी से, तो भी दीदी की विशेषता उन्होंने बताई कि दीदी ओम शांति भवन में सबसे पहले आके बैठ जाती थी और सामने, हाँ ओम शांति भवन में सुनाया, और बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी मुरली सुनाती थी, और ये इतने निर्मांजित होकर डायरी पेन लेके बैठ जाती थी, प्रश्न उत्तर निकालती थी और फिर मुरली के बाद बोलती थी कि हम अभी बैडमिंटन खेलेंगे। अब ज्ञान तो सबके पास होता ही है, उनके प्रश्न का जवाब हर किसी के पास होता था, लेकिन उनका कहना था कि बाबा ने क्या कहा, बाबा के शब्दों में बताओ आज बाबा ने क्या कहा, और सबको दीदी फेल कर देती थी। तो ये गॉडली स्टूडेंट की जो निशानी है, चार दिन की चांदनी क्यों हो जाती है, क्यों वो स्थाई नशा, वो स्थाई रुचि नहीं रह पाती, क्यों, हाँ संग दोष में आ जाते हैं, उसमें कुछ रमणीकता नहीं लगती, लगता है रोज रोज वही है, हाँ तो नवीनता बहुत जरूरी। तो बाबा तो नए नए तरीके से सुनाते हैं लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तब क्या हो जाता है, चार दिन की चांदनी हो जाती। फिर वस्तु, वैभव, वस्तु में क्या आएगा, नई वस्तु खरीद ली, नया मोबाइल खरीद लिया, नई गाड़ी खरीद ली, नया होता है तब तक उसमें बिजी रहेंगे, बाद में कुछ दिनों के बाद उब जाते हैं और फिर उससे वैराग्य आने लगता है। तो केवल उसके आकर्षण में नहीं आना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है, बस उन साधनों का यूज करना है हमें साक्षी होके। वो साधन ही सब कुछ नहीं है। फिर कपड़ा, जैसे कि वस्त्र है, इच्छा होती है, आंखें देखती है, इच्छा होती है मैं भी ये खरीदूं, खरीद के भी लाते हैं, पहनते भी हैं, पुराना एक दिन होना ही है, भले कपड़ा नया है और हमने पहना नहीं, बस कबर्ड में रखा, एक साल हुआ, दो साल हुआ, तीन साल हुआ, वो नया रहेगा क्या? आपने पहना भी नहीं है उसे, उसको आपने टच भी नहीं किया है, रखा हुआ है, तो भी उसको एक दिन पुराना होना ही है। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो वो फट जाएगा। तो ये क्या है, जैसे कि सृष्टि का नियम है, उसको पुराना होना ही है। तो उसमें हमारा क्या नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। फिर चार दिन की चांदनी और कहा होती है, जैसे कि भक्त लोग, अभी चातुर्मास है, अभी नवरात्रि है, उन दिनों में बहुत ही भगवान को प्यार से याद करेंगे, घर को स्वच्छ करेंगे, खुद साफ सुथरा रहेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे, पवित्रता के नियमों का पालन करेंगे, खान पान की शुद्धि भी रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो पूरा हुआ, ओम शांति, फिर अपने ट्रैक पे वो आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। तीर्थ यात्रा करते समय ध्यान रखते हैं कई बातों का, और फिर घर में आए तो फिर वैसे की वैसे। बिल्कुल उसी तरह हम भी ब्राह्मण जीवन में, अभी अव्यक्त मास है, अभी मम्मा का मास है, तो कितनी वो स्मृति आ जाती है कि अभी अगस्त आ रहा है, दादी डे आ रहा है, तो वो स्मृतियां हमें आ जाती है, उनके संग के अनुभव हम रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन वो चार दिन बीते और फिर अपने ट्रैक पे आ गए। फिर जैसे उधर तीर्थ यात्राएं करते हैं, वैसे हम भी मधु बनाते हैं, साल में एक बार प्लान बनाते हैं, मधुबन में आ गए, यहाँ आ गए, बहुत सुंदर अमृत वेला, पूरी अलौकिक दिनचर्या, और जैसे ही घर गए तो बिल्कुल उधर के ही बन गए। तो इसी को क्या कहेंगे, बाबा के शब्दों में सोडा वाटर बाबा कहते हैं। कभी कभी बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं और कभी कभी ठंडे ठाकुर। तो भक्त और हमें अभी हमने कंपैरिजन देखा। फिर दुनिया में क्या होता है, लव अफेयर्स है, शादी है, बड़े उमंग उत्साह से एक उत्सव की तरह उसको मनाते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेशन करते हैं, और बाद में कुछ ही दिनों के बाद उनको पता चलता है कि कहाँ झमेले में फंस गए। हाँ, कौन सी मुसीबत मोड़ ली। फिर और कौन सी बातें हैं जिनमें होता है कि पहले पहले तो सुख मिलता है, बाद में उसके डिसएडवांटेज, उसके ड्रॉबैक हमारे सामने आते हैं। हाँ, व्यक्तियों में आकर्षण, वही मित्र, कोई मित्र बना लेते हैं, किसी को फ्रेंड बना लेते हैं। पहले तो बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, अच्छा लगता है बातें करना, शेयरिंग करना, साथ में घूमना। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो उसका मुख भी देखना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल ही मुख भी नहीं देखना चाहते। हाँ, देखते ही किनारा कर लेते। तो ये संबंधों में कटुता आ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्व संबंधों का रस हमें किससे लेना है, वो तार किसके साथ जुड़नी है, वो जुटी ही नहीं है। हाँ, जहां हर दिन चांदनी है ना। फिर और कौन सी पॉइंट हम ले सकते हैं कि जैसे फास्ट फूड, फिर वही के वही बैलेंस। तो फास्ट फूड अगला पॉइंट है कि फास्ट फूड कि जैसे भोजन जो तुरंत बना के खाते हैं, जैसे मैगी है, कुछ फास्ट फूड हम खाते हैं तो, या कोल्ड ड्रिंक्स है, वो खाते ही तुरंत आनंद की अनुभूति तो उनको होती है, लेकिन बाद में पेट गड़बड़ हो जाता है, बाद में दवाइयां लेनी पड़ती है। तो भोजन अगर हम बाबा की याद में शुद्ध भोजन बना के खाएंगे, बाबा को अर्पण करके भोग लगा के बाबा की याद में खाएंगे, तो जरूर कई बीमारियों से हम दूर रहेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि पोस्ट पोजिशन, कि कोई व्यक्ति अपना दिन रात एक कर देता है कि फलाने पद पालदानी पोस्ट में प्राप्त करो, और जैसे ही वो पद वो पोजिशन वो प्राप्त कर लेता है तो उसको थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि उस पद को संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन में भी हमने एक स्थान प्राप्त कर लिया है ना, टाइटल तो मिल गया दीदी जी भाई जी, लेकिन उस टाइटल को मेंटेन करना, उस टाइटल की गरिमा रखना, हाँ उसकी गरिमा को कायम रखना, उसकी मर्यादा को बनाए रखना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। फिर लोग कहते हैं देखो कथनी और करनी एक नहीं है, फिर कहते हैं नहीं ये पहले नया था तब सब करता था, अब थोड़ा संग दोष में आ गया है, तो क्या हो गया चार दिन की चांदनी। फिर स्थान, कोई गांव का व्यक्ति होता है और वो उसको आकर्षण होता है कि शहर में क्या होगा, कैसे वो जीवन होंगी, कैसी वो लाइफ होगी, उसको बड़ा अच्छा लगता है वो शहर की चकाचौंध। लेकिन वो जब खुद शहर में आता है तो पहले दिन तो देखता है कि देखो यहाँ तो ये भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो वो घूमता फिरता है। जैसे ही चार दिन खत्म हुए फिर उसको अपने गांव की याद आती है कि अरे इससे तो मेरा गांव कई गुना अच्छा है। वहां का गांव का वो तालाब ही अच्छा था, यहाँ तो हमें इतने से कंजेस्टेड में नहाना पड़ता है। तो ये होता है स्थान, केवल स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। तो हमारी मन की स्थिति, मन की स्टेज कौन सी है? पिछले संडे, अभी जो संडे गया उसके जो मुरली चली थी 19 तारीख की, तो वो फरवरी मास की मुरली थी 86 की, तो उसमें बाबा ने पूछा था कि वो एक सेलिब्रेशन चल रहा था, कौन सा, समर्पण समारोह विदेशी भाई बहनों का। तो बाबा ने पूछा था एक प्रश्न उसमें कि आपकी स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज पर बैठे हो। दो स्टेज बाबा ने बताई, एक तो स्थूल स्टेज पर बैठे हो और दूसरी आपकी मन की स्टेज क्या है, वो स्थिति क्या है। तो मन कौन सी स्टेज पर बैठा हुआ है, भले तन से हम है सम्मान समारोह में बैठे हैं, कई प्रकार के सेलिब्रेशन दुनिया में भी मनाते हैं, कई त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, बर्थडे होते हैं, कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं, दुनिया में भी मनाते हैं तो हम यहाँ इस संगम युग पर भी मनाते हैं। लेकिन वो सम्मान, वो जो त्योहार सम्मान, वो जो सेलिब्रेशन हम मनाते हैं उसमें केवल बाह्य मुक्ता या बाह्य डेकोरेशन नहीं होना चाहिए, बस ताज पहन लिया, माला डाली। तो इस मुरली में बाबा ने माला भी दो प्रकार की बताई थी, कौन सी, हाँ विजय की, दृढ़ता की। और बाबा ने कहा था कि ये दृढ़ता होगी, सारे संबंध एक बाप से तार जुटी हुई होंगी, तो ये विजय की माला तो आपके गले में है ही। तो यही पर बाबा ने सर्व संबंधों की भी बात कही थी कि सर्व संबंध अगर एक बाप से जुटी हुई है तार, तो फिर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा नहीं होगा, सदा उस अतीन्द्रिय के झूले में झूलते रहेंगे। तो डबल हार और डबल स्टेज भी देख ली, डबल माला देख ली। तो अभी ये जो चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरा। तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए या किसी की निंदा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कोई व्यक्ति है, नई चीज है, यूज नहीं कर पाते तो उनको मजाक उड़ाएंगे, ये क्या चार दिन की चांदनी, ये तो खराब कर देगा, इसको तो यूज करना भी नहीं आता है। या किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई सेवा कर रहा है तो कहेंगे ये तो क्या नए नए हैं, देखो कब तक करते हैं, चार दिन करेंगे आपस में लड़ पड़ेंगे। तो किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने के बजाय उसकी क्या कर देंगे, निंदा कर देंगे, किसी को कटाक्ष कर देंगे। तो ये चार दिन की चांदनी ब्राह्मण जीवन में भी नहीं होनी चाहिए। कोई हमारी स्तुति करे, महिमा करे, महिमा के हार पहनाए तो हम खुश हो जाए, और कोई कटाक्ष वाला बोल तो छोड़ो एक शब्द भी बोल दे तो क्या हो जाते हैं, मायूस उदास हो जाते। मेरा खुद का भी एक अनुभव है, जैसे मुरली पूरी हुई और सीनियर राजयोगा टीचर वो आंगन में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बुलाया, ओम शांति किया और मुझे बुलाया, पूछा कि आप कहाँ सेवा कर रहे हो अभी। तो मैंने बताया कि दीदी मैं तो अभी 3 साल से इधर ही हूँ, मधुबन में हूँ। तो उनको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पहले जब मैं सेवा में आता था वहाँ ज्ञान सरोवर में, तो वो मुझे बताया करते थे कि आपको तो पढ़ना है तो अभी आप जा सकते हो तो मैं उनसे दूरी बनाए रखता था। लेकिन आज खुद उन्होंने मेरी इतनी महिमा की कि उन्होंने कहा देखो आपकी इच्छा थी ना मधुबन में रहना है, तो देखो आपकी तो बाबा ने आश पूरी कर दी। और दिल गदगद हो उठा कि देखो इतने सालों बाद उन्होंने मुझे पहचाना और मेरी जो शुभ इच्छा थी, भावना थी कि मधुबन में रहना है, और उसको भी उन्होंने पहचाना था अच्छी तरह से, और आज उन्होंने मुझे क्या दिया, बधाई दिया, प्रोत्साहित किया कि अभी कैसे पुरुषार्थ करना है। बहुत खुशी हुई। अगले ही 2-3 दिन में क्या होता है, दोपहर के समय में जब डिपार्टमेंट क्लोज करके डाइनिंग की ओर बढ़ रहा था, तो डिस्पेंसरी में एक बहन जी बैठे थे, पहचान तो थी नहीं लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे, पूछा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या सेवा करते हो। तो मैंने वही अपने नशे में बताया, हाँ 3 साल हो गए यही। अच्छा 3 साल हो गए, तो अभी मधुबन निवासी बनोगे। मैंने कहा हाँ बन गया ना बिल्कुल नशे से तो फिर बहन जी ने मुझे ऊपर से ऐसे नीचे देखा और कहते हैं बेचारा जाओ। तो वो एक शब्द बेचारा इतना लगा मुझे अंदर, मैं डाइनिंग में गया, ऐसे तैसे खाना खाया, वो गले के नीचे उतर ही नहीं रहा था भोजन। फिर विशाल भवन में गया, फिर आईने के सामने खड़ा हुआ, बाबा क्या ये चेहरा बेचारा है, क्या ऐसी कमी है मुझ में जो मुझे बेचारा कहा। फिर दौड़े हुए आया और ढूंढा, बहन जी तो मिल नहीं रही, क्यों मुझे बेचारा कहा, पूछ तो लू लेकिन दोबारा बहन जी तो मिले नहीं। तो वही फिर मैं बाबा के पास बैठा, बाबा से रोहरियान की बात की कि बाबा क्यों मुझे उन्होंने बेचारा क्या, क्या सचमुच मेरा चेहरा बेचारा है। तो सचमुच ये ब्राह्मण जीवन में जैसे कि इंसल्ट है हमारी कि कोई हमें बेचारा कहे, क्यों कहे, हमें कौन मिला है। हाँ उन्होंने कटाक्ष के रूप में कहा होगा या किस रूप से कहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस बात को पॉजिटिव ले लिया कि सचमुच मेरा जो लक्ष्य था, चाहे मधुबन हो या चाहे सेंटर हो, आपने एक लक्ष्य लिया कि समर्पण, और आप समर्पण की स्टेजेस को पार भी कर ली। जैसे सेंटर पे किसी को रहना है तो उनको क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर ट्रायल होता है, फिर ट्रेनिंग होता है, फिर उनको जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। लेकिन ये जो स्थूल चीजें हैं ये तो पार हो गई, लेकिन सूक्ष्म में अभी मेरा लक्ष्य क्या है? क्या 4 दिन की चांदनी है? कोई हमें बेचारा तो नहीं कह रहा है? या सचमुच मेरी वो अवस्था वैसी है तो मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा? अपने लक्ष्य को दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा तो नहीं है। तो बाबा ने जो हमें पहले से ही कुछ ज्ञान के बिंदु दिए हुए हैं, अगर उसको हम सदा साथ रखेंगे तो ये नौबत हमारे ऊपर नहीं आई। हाँ, कि जैसे, हाँ जैसे अभी आपने कहा कि टॉर्च लेके चल सकते हैं, वैसे राजा जनक अपने गुरुवर के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो उस ज्ञान चर्चा में वो राजा पूछते हैं, राजा जनक अपने गुरु से पूछते हैं कि अभी सूर्यास्त हो चुका है और रात के समय रास्ता ढूंढना है तो कैसे ढूंढे? तो गुरुवर बताते हैं चांद तारों के सहारे हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, मार्ग दिशा हम ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने गुरुवर को कहा कि नहीं गुरुवर, बादल आ चुके हैं और वो चांद तारे भी आसमान के दिखाई नहीं दे रहे हैं और न मेरे पास कोई दीपक है, तो भी मुझे रास्ता ढूंढना है, उस दिशा की ओर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो गुरुवर ने उत्तर दिया कि अपनी सूझबूझ के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर। तो जो समझ बाप ने हमें दी हुई है, जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भव, कि खुद ही दीपक बनना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे पॉइंट है जो बाबा ने हमें बताई हुई है, जो हमें उस दीपक की तरह अंदर में जलते रहे, जो खुद हम प्रकाशमान होते कर चलते रहेंगे तो और भी भटके हुओं को हम रास्ता दिखा सकेंगे। तो कौन से वो बिंदु है कि कौन सी वो ज्ञान की पॉइंट सदा हम साथ में रखेंगे तो ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा नहीं आएगा हमारे जीवन में, सदैव वही चांदनी ही चांदनी रहेंगी। हाँ, प्राप्तियों की लिस्ट हमारे सामने हो। हाँ, समय की वैल्यू, समय की पहचान अगर हमें हो, समय की वैल्यू हमारे पास हो, तो फिर ये जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं इसके प्रति हमारे अंदर में वैराग्य हो कि यहाँ के सुखों के लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है, यह सुख कैसे है, काग विष्टा समान है। और हाँ, ये तो क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, नथिंग न्यू है, भटकाने वाले है। और हाँ, देखते हुए इसको नहीं देखना है, सुनते, हाँ जो संसार को रोशनी देने वाले हैं वो खुद कैसे पूछ सकते हैं? ये नशे वाली पॉइंट्स अगर हमारी बुद्धि में होंगी तो हमारे ऊपर वो नौबत नहीं आएंगी। फिर कायदे में फायदा, कायदे में हम चलते रहेंगे, श्रीमत पर हम चलते रहेंगे। ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में धारणा, अगर धारणा हमारे अंदर है, बस ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, बाबा ने दिया, मैंने उसको रियलाइज किया है ना, बुद्धि में रखा और दूसरों को सुनाया, लेकिन रियलाइज नहीं कर पाए, पूरी तरह से धारण नहीं कर पाए। आपस में व्यवहार में जब आते हैं, हमें वो सिर्फ मुख से तो कह रहे भाई भाई, लेकिन उसकी गहराई तो बिल्कुल है नहीं, सच्चाई तो उसमें रत्ती भर भी नहीं है। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मनमुटाव है, हाँ एक दूसरे की निंदा में लगे हुए हैं, बस है भाई भाई, मुख से भाई भाई कह रहे, लेकिन अंदर में वो धारणा ही नहीं है, तो क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाबा आज हमें लेने जाने आए हैं घोर अंधियारे से सोजरे की ओर, घोर सोजरे की ओर ले जाने के लिए आए। तो ये सोजरे में जब हम जाएंगे, ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स हमारे पास होंगी धारणा वाली, जब प्रैक्टिकल में धारणा होगी, ज्ञान योग के साथ प्रैक्टिकल में धारणा हमारी होंगी, एक रस अवस्था होंगी, एक रस स्थिति, वो एक रस अवस्था हमारी बनाए रखने के लिए जो भी बाबा ने दी हुई पॉइंट है, जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि बहुत काल का अभ्यास, ऐसे नहीं कि चार दिन किया चार दिन सो गए। तो अगर हम बहुत काल का अभ्यास निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस प्रैक्टिस से ही क्या होगा, ये जो घना अंधेरा है उससे हम क्या हो जाएंगे, घोर सोजरे में आ जाएंगे। और कोई पॉइंट रह गई, कौन सी कहावत, बड़ी ढाक के तीन पात, अच्छा, और वो भी है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, मतलब पूरा ज्ञान तो उसको नहीं मिला है, आधे को लेकर ही खुश हो जाता है, अध जल गगरी छल कत जाए, तो बाद में उनको क्या होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। इसलिए पहले क्या करना है, अपने आप को भरना है, खुद में वो स्थिरता लानी है, दृढ़ता लानी है, तो हम आने वाले दुखों से, आने वाले जो समय है उसमें हम क्या हो सकते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हैं, रख सकते हैं अंगद समान। और हाँ, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीप, दे दीप्य मान रहे तो अंधेरे से हमें डरने की बात ही नहीं। हाँ, अच्छा, ओम शांति।